एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं आपकी दूसरी मेजबान।
आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो सुनते ही मन में कई तरह के भाव जगाता है। शहादत,
मार्टियर्डम।
हाँ बिल्कुल, ये शब्द जितना शक्तिशाली है उतना ही जटिल भी है। हम अक्सर इसे सुनते हैं, कभी किसी की वीरता की कहानी के तौर पर,
हाँ,
तो कभी किसी विवाद के केंद्र में।
बिल्कुल, और आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे लियोन मिशेल के काम के जरिए। मिशेल हमें बताते हैं कि शहादत महज मतलब किसी विश्वास के लिए जान देना भर नहीं है।
अच्छा,
ये एक विचार है जिसे गढ़ा जाता है, जिस पर आप कह सकती हैं बहस होती है, और जिसका मतलब समय और समाज के साथ बदलता रहता है।
और ये समझना आज इसलिए जरूरी है मेरे ख्याल से क्योंकि शहादत की कहानियां आज भी हमारे आसपास की दुनिया पर गहरा असर डाल रही हैं। वे राजनीतिक माहौल बनाती हैं, सामाजिक पहचान गढ़ती हैं, और कभी कभी तो हिंसा को भी जायज ठहराने के काम आती हैं।
सही।
तो चलिए इस जटिल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
पहले बात करते हैं जूलियन मिशेल की, जिनके विचारों पर आज के हमारी चर्चा आधारित है।
हाँ,
वे एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में संचार कला और धर्म के प्रोफेसर हैं।
संचार, कला और धर्म, सुनने में ये तीन काफी अलग अलग विषय लगते हैं ना?
हाँ, लगते तो है, लेकिन मिशेल की खूबी यही है कि वे इन तीनों को जोड़कर देखती हैं।
अच्छा,
वे सिर्फ धर्म ग्रंथों या इतिहास के जानकार नहीं है, बल्कि वे मीडिया यानी संचार के माध्यमों और समाज पर उनके असर को भी मतलब गहराई से समझती हैं।
तो उनका फोकस सिर्फ थ्योरी पर नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने दशकों तक धर्म, मीडिया और संघर्ष के बीच के रिश्तों पर काम किया है। और दिलचस्प बात यह है कि उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है।
अच्छा,
उन्होंने बीबीसी जैसे बड़े संस्थानों के लिए डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं।
ओ,
इसका मतलब है कि वे जानती हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, कहानियां कैसे कही जाती हैं और कैसे वो लोगों तक पहुंचती हैं।
हाँ, ये अनुभव तो बहुत मायने रखता है।
बिल्कुल, ये अनुभव उन्हें शहादत जैसे विषय को समझने का एक, आप कह सकते हैं, अनूठा नजरिया देता है।
सही कहा, वे शहादत को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना या वो कोई धार्मिक कृत्य की तरह नहीं देखते।
नहीं,
उनके लिए ये एक संचार कार्य है, मतलब एक संदेश देने का तरीका।
हाँ, कम्युनिकेटिव एक्ट।
वे इस बात पर जोर देते हैं कि शहादत की कहानी कौन कह रहा है, कैसे कह रहा है और किस मकसद से कह रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है।
बिल्कुल, ये सिर्फ मौत की कहानी नहीं बल्कि कहानी कहने की ताकत की कहानी है।
हाँ।
तो मिशेल के काम का निचोड़ क्या है, सार क्या है? उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि शहादत कोई अपने आप में मतलब तयशुदा चीज नहीं है जिसे हम बस पहचान लेते हैं।
ऑब्जेक्टिव नहीं?
ऑब्जेक्टिव नहीं।
अच्छा, ऑब्जेक्टिव नहीं है?
नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसे समाज मिलकर बनाता है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है।
ठीक है।
और जिस पर अक्सर जबरदस्त मतभेद होता है, कंटेस्टेड।
मतलब कोई इंसान सिर्फ इसलिए शहीद नहीं बन जाता कि उसकी मौत किसी ऊंचे मकसद के लिए हुई।
हाँ बिल्कुल, उसकी मौत को शहादत का दर्जा तब मिलता है जब कोई समुदाय, कोई समूह उसे एक खास कहानी के तौर पर पेश करता है,
कि नैरेटिव देता है।
एग्जैक्टली, एक ऐसी कहानी जिसमें मौत को हार नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक गवाही, मार्टर्स, जो यूनानी शब्द है गवाह के लिए, या फिर जीत के रूप में दिखाया जाता है।
तो यहाँ कहानी गढ़ने की कला, नैरेटिव बनाने की शक्ति सबसे अहम हो जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, और मिशेल इसी सवाल की पड़ताल करती हैं कि आखिर कैसे एक दर्दनाक हिंसक मौत,
हाँ,
अचानक एक प्रेरणादायक प्रतीक बन जाती है। वे दिखाती हैं कि शहीद का लेबल लगाना असल में एक तरह का वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष है।
अच्छा, एक संघर्ष।
हाँ, असली ताकत मरने वाले में उतनी नहीं जितनी उसकी मौत की कहानी को नियंत्रित करने वाले में होती है।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात है।
है ना?
उनका काम हमें ये समझने में मदद करता है कि ये विचार सिर्फ पुराने जमाने की बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
प्राचीन काल से लेकर आज के डिजिटल युग तक शहादत की अवधारणा लगातार बदलती रही है। और अलग अलग राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक गुटों ने इसे अपने अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल किया है। चलिए अब मिशेल के कुछ मुख्य विचारों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं।
हाँ जरूर।
एक बहुत ही बुनियादी और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात जो वो कहती हैं वो ये है कि शहादत खोजी नहीं जाती, बनाई जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका सीधा सा मतलब है कि शहादत कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, जैसे बारिश होना या सूरज निकलना।
अच्छा,
एक ही व्यक्ति की मौत को एक समूह शहादत कह सकता है, दूसरा समूह उसे आत्महत्या करार दे सकता है।
हाँ, हो सकता है।
सिर्फ एक दुखद हादसा।
सही।
ये सब इस पर निर्भर करता है कि कहानी कौन सुना रहा है और किस नजरिए से। मिशेल कहती हैं कि शहादत के लिए दर्शकों की व्याख्या और समाज की सहमति जरूरी है। ये एक संदेश है जिसे एक समूह दूसरों तक पहुंचाना चाहता है।
इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है, प्रदर्शन का, परफॉर्मेंस।
हाँ,
मिशेल कहती हैं कि शहादत एक तरह का पवित्र रंगमंच है, सेक्रेट थिएटर। ये थोड़ा नाटकीय लगता है।
हाँ, नाटकीय लगता है।
क्या इसका मतलब है कि शहीद अभिनय करते हैं?
नहीं, अभिनय शायद सही शब्द नहीं है, लेकिन मिशेल का इशारा इस तरफ है कि शहादत की घटनाओं में अक्सर एक जाना पहचाना पैटर्न या स्क्रिप्ट दिखाई देता है।
अच्छा, एक पैटर्न।
हाँ, जैसे शहीद होने वाला व्यक्ति अधिकारियों के सामने निडर होकर अपनी बात रखता है, शांति से पीड़ा या मौत को स्वीकार करता है, कोई अंतिम संदेश या प्रार्थना करता है।
अच्छा,
ये सब एक तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन है जिसका मकसद देखने वालों पर गहरा असर डालना होता है।
और ये प्रदर्शन क्या ये मौत के बाद भी जारी रहता है?
हाँ बिल्कुल, मौत के बाद उनके अवशेषों को सहेजना, उनकी जीवनियां लिखना, जिन्हें हैजियोग्राफीज कहते हैं।
हाँ हाँ,
जिनमें अक्सर उनके जीवन को बढ़ा चढ़ाकर, यहाँ तक कि चमत्कारी घटनाओं से जोड़कर पेश किया जाता है। स्मारक बनाना, उनकी बरसी मनाना, ये सब उसी कहानी को जिंदा रखने और मजबूत करने के तरीके हैं। ये सब मिलकर उस पवित्र रंगमंच को रचते हैं।
लेकिन जाहिर है हर कोई इस कहानी या इस प्रदर्शन को स्वीकार नहीं करता होगा।
बिल्कुल नहीं। यहीं पर विवादित मौतें और प्रतिकथाएं, मतलब काउंटर नैरेटिव सामने आती हैं, है ना?
सही कहा।
अक्सर जिस समूह के खिलाफ शहीद ने जान दी होती है, जैसे कि राज्य या कोई विरोधी गुट, वो इस शहादत के दावे को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करता है।
कैसे?
वे शहीद कहे जा रहे व्यक्ति को देशद्रोही, आतंकवादी, धर्मद्रोही या मानसिक रूप से बीमार बताकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश।
हाँ, उनकी कोशिश होती है कि शहादत की कहानी लोगों के दिलो दिमाग में घर न कर पाए। ये दिखाता है कि शहीद का तमगा कितना शक्तिशाली है और इस पर कब्जा करने के लिए कैसी खींचतान चलती है।
और इस खींचतान में, इस कहानी कहने की लड़ाई में मीडिया का रोल तो बहुत ही अहम हो जाता होगा।
ओ, बहुत ज्यादा।
यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है।
मिशेल इस पर बहुत जोर देती हैं। वे दिखाती हैं कि शहादत का इतिहास असल में मीडिया टेक्नोलॉजी के विकास के इतिहास से जुड़ा हुआ है।
अच्छा,
कैसे?
सोचिए, जब कहानियां सिर्फ जुबानी या हाथ से लिखी पांडुलिपियों के जरिए फैलती थी,
हाँ,
तो उनका असर धीरे धीरे और मतलब सीमित दायरे में होता, हाँ, था। फिर आया प्रिंटिंग प्रेस।
हाँ,
इसने जॉन फॉक्स की बुक ऑफ मार्टर्स, जो 1563 में आई थी, जैसी किताबों को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाया। हाँ, उसका तो बहुत असर हुआ था इंग्लैंड में।
बिल्कुल, उस किताब ने इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट पहचान बनाने में अहम भूमिका निभाई।
और फिर फोटोग्राफी, फिल्म, टेलीविजन और अब इंटरनेट और सोशल मीडिया ने तो जैसे सब कुछ बदल दिया।
बिल्कुल, तस्वीरों और फिल्मों ने शहादत को एक भावनात्मक और कह सकते हैं वैश्विक पहचान दी। सोचिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर या चे ग्वेरा की तस्वीरों के बारे में।
हाँ, वो तस्वीरें तो आइकॉनिक है।
और आज का डिजिटल मीडिया, मिसाल के तौर पर आइसिस जैसे गुट जो अपनी विचारधारा फैलाने के लिए शहादत का इस्तेमाल करते हैं, वे बहुत चालाकी से बनाए गए वीडियोस के जरिए अपनी कहानियों को पलक झपकते दुनिया भर में फैला देते हैं।
हाँ, वो तो है।
मिशेल का तर्क है कि मीडिया सिर्फ इन घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करता, बल्कि वो शहादत की कहानी को बनाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है।
बनाने में हिस्सा लेता है मतलब
मीडिया का तरीका, माध्यम का चुनाव, ये सब संदेश को आकार देता है। मीडिया सिर्फ एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है।
ये अहम बात है। एक और पहलू जिस पर मिशेल ध्यान दिलाती हैं, वो है शहादत का लैंगिक पहलू, जेंडर्ड नेचर।
हाँ,
क्या पुरुषों और महिलाओं की शहादत को अलग तरह से पेश किया जाता है?
हाँ, वे बताती हैं कि अक्सर महिला शहीदों की कहानियाँ, जैसे 3री सदी की संत परपेचुआ,
हाँ, उनका नाम सुना है,
उनकी कहानियाँ पुरुषों द्वारा इस तरह लिखी गईं कि वे समाज के पितृसत्तात्मक ढांचे को चुनौती न दे। उनकी पवित्रता पर, उनकी वर्जिनिटी पर ज्यादा जोर दिया गया।
अच्छा।
वहीं आजकल के कुछ उग्रवादी संदर्भों में शहीदों को अक्सर बेहद मर्दाना, हाइपर मैस्कुलिन रूप में एक ताकतवर योद्धा की तरह पेश किया जाता है। ये लैंगिक चित्रण हमें बताते हैं कि उस समाज में मर्दानगी और स्त्रीत्व के क्या मायने समझे जाते हैं। ये भी कहानी का हिस्सा है।
और ये शहादत का विचार सिर्फ धार्मिक दायरों तक ही सीमित नहीं रहा है ना, आपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जिक्र किया था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। मिशेल धर्मनिरपेक्ष शहीदों यानी सेक्युलर मार्टर्स की भी बात करती हैं।
जैसे
मार्टिन लूथर किंग जूनियर या नेल्सन मंडेला जो शहीद होने को तैयार थे।
हाँ।
या फिर ट्यूनिशिया के मोहम्मद बुआजीजी जिनकी आत्मदाह ने अरब क्रांति की शुरुआत की।
ओ हाँ, वो घटना।
इनकी मौतें या बलिदान सामाजिक या राजनीतिक बदलाव के लिए हुई और इन्हें भी कई लोगों ने शहादत के रूप में देखा।
सही।
ये दिखाता है कि शहादत का ढांचा कितना लचीला है, इसे अलग अलग मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो इस सारी बातचीत से मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं, की टेकअवेज? सबसे पहली और जरूरी बात तो यही लगती है कि शहादत कोई पहले से तय सच्चाई नहीं बल्कि एक सामाजिक निर्माण है।
हाँ, बिल्कुल।
इसे बनाया जाता है, खोजा नहीं जाता।
दूसरी अहम बात है कहानी और प्रदर्शन की ताकत। हाँ, कहानी, नैरेटिव इज की। शहादत की असली शक्ति उसकी कहानी में है, जिसे बार बार सुनाया जाता है, निभाया जाता है। और जिसके जरिए मौत को भी एक मायने दिए जाते हैं। हार को जीत में बदलने की ताकत है कहानी में।
तीसरा, मीडिया की भूमिका।
हाँ।
ये सिर्फ संदेशवाहक नहीं है,
नहीं,
बल्कि कहानी गढ़ने में सक्रिय भागीदार है।
बिल्कुल। शहादत की कहानी और उसका असर मीडिया तकनीक के साथ साथ बदलता रहा है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास समाचारों में, सोशल मीडिया पर जो कहानियां देखते हैं उन्हें कौन और कैसे गढ़ रहा है।
सही सवाल है। चौथा, शहादत एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार है।
और राजनीतिक हथियार?
हाँ, शहीद का लेबल लगाकर नैतिक बल हासिल किया जाता है, समर्थकों को एकजुट किया जाता है और विरोधियों को गलत ठहराया जाता है। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं, अक्सर ये गहरी राजनीति है।
और पांचवा, शायद सबसे विवादास्पद, शहीद और आतंकवादी के बीच की रेखा।
हाँ, वो रेखा बहुत धुंधली और विवादित है।
कौन शहीद है और कौन आतंकवादी, ये अक्सर इस बात पे निर्भर करता है कि आप कहानी किस तरफ से सुन रहे हैं।
बिल्कुल। मिशेल हमें सिखाती हैं कि इन लेबलों पर आंख मूंद कर यकीन करने के बजाय सवाल उठाना कितना जरूरी है। मिशेल के काम में कुछ विचार ऐसे हैं जो वाकई मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे उनका ये कहना कि शहादत खोजी नहीं जाती बल्कि निर्मित की जाती है।
ये बार बार याद रखने वाली बात है।
हाँ, ये याद दिलाता है कि हमें हर दावे को जस का तस स्वीकार नहीं करना चाहिए बल्कि उसके पीछे के इरादे और प्रक्रिया पर सवाल उठाना चाहिए।
एक और बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, हर शहादत की कहानी एक साथ मौत के बारे में एक कहानी और जीवन के लिए एक रणनीति होती है।
बिल्कुल।
यानी ये कहानियां सिर्फ बीते हुए कल का बयान नहीं है बल्कि आने वाले कल को एक खास दिशा देने की कोशिश है, भविष्य को गढ़ने का एक औजान है।
सही कहा। और ये भी बहुत जरूरी है, मीडिया शहादत की केवल रिपोर्टिंग नहीं करता, वह इसे बनाने में भाग लेता है। आलोचनात्मक बनाता है। हमें पूछना चाहिए कि मीडिया हमें क्या दिखा रहा है और क्यों।
मिशेल के ये सवाल भी अहम है। शहादत को समझने के लिए हमें ना केवल ये पूछना चाहिए कि कौन मरा, बल्कि ये भी कि कौन याद करता है, कैसे और क्यों।
हाँ, याद करने वाला कौन है और कैसे याद कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ये हमें मरने वाले व्यक्ति से आगे बढ़कर उस पूरे सामाजिक प्रक्रिया को देखने के लिए कहता है जिसके जरिए किसी को शहादत का दर्जा मिलता है।
बिल्कुल। और अंत में मिशेल की एक चेतावनी, सबसे खतरनाक शहादत की कहानियां वे हैं जो आलोचना से परे होने का दावा करती हैं।
ओह, ये तो बहुत जरूरी चेतावनी है।
हाँ, जब किसी कहानी को इतना पवित्र मान लिया जाए कि उस पर सवाल उठाना ही पाप समझा जाने लगे, तब हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है।
सवाल पूछने की हिम्मत बनाए रखना जरूरी है,
हमेशा।
तो ये सारी गहरी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं? मिशेल का विश्लेषण हमें व्यावहारिक तौर पर क्या सिखाता है?
मुझे लगता है सबसे पहले तो ये हमें बेहतर मीडिया साक्षर बनाता है, मीडिया लिटरेट।
बिल्कुल। अब जब हम खबरों में या सोशल मीडिया पर शहीद, बलिदानी या इसके विपरीत आतंकवादी, उग्रवादी जैसे शब्द देखेंगे,
हाँ,
तो हम शायद एक पल रुककर सोचेंगे, ये लेबल कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, क्या इस घटना की कोई और कहानी भी हो सकती है।
हाँ, हम उन शब्दों के पीछे की राजनीति को बेहतर समझ पाएंगे।
बिल्कुल। और ये हमें दुनिया भर में चल रहे संघर्षों को समझने में भी मदद करता है। कई जगहों पर शहादत की कहानियां संघर्ष को हवा देती हैं। मिशेल का विश्लेषण हमें अलग अलग गुटों के इरादों
और उनकी सोच को समझने में मदद कर सकता है,
भले ही हम उनके तरीकों से सहमत ना हो।
हाँ, भले ही सहमत ना हो, ये सहानुभूति की बात नहीं बल्कि समझ बढ़ाने की बात है।
राजनीतिक भाषा को पहचानने में भी मदद मिलती है ना? बिल्कुल। जब नेता राष्ट्र के लिए बलिदान की बात करते हैं या किसी खास समूह को शहीद कहकर महिमा मंडित करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सिर्फ भावनाओं की बात नहीं बल्कि अक्सर वोट जुटाने या किसी नीति को सही ठहराने की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है।
और शायद निचली स्तर पर भी हमें सोचने पर मजबूर करता है, अपने विश्वासों के बारे में।
हाँ,
उन मूल्यों के बारे में जिनके लिए हम खड़े होना चाहते हैं, और त्याग का हमारे लिए क्या मतलब है। मेरे लिए इस चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि शहादत शब्द कितना ताकतवर है, लेकिन साथ ही कितना लचीला भी है, फ्लेक्सिबल। इसका कोई एक स्थिर मतलब नहीं है। इसे समझने के लिए हमें हमेशा एक आलोचनात्मक नजरिए, एक सवाल पूछने वाले दिमाग की जरूरत है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
सही कहा। और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि कहानियां, खासकर मौत से जुड़ी मार्मिक कहानियां, समाज को कितना गहरा आकार देते हैं।
हाँ, कहानियों की ताकत।
शहादत की कहानी असल में हार को जीत में, दुख को प्रेरणा में बदलने का एक जबरदस्त तरीका है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शक्तिशाली प्रक्रिया कैसे काम करती है, कौन इसे नियंत्रित करता है और समाज पर इसके क्या दूरगामी परिणाम होते हैं। मिशेल का काम हमें इन जटिल कहानियों को समझने के लिए जरूरी बौद्धिक औजार देता है।
वाकई ये चर्चा सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद इन शक्तिशाली कहानियों को कैसे देखते, समझते और उनसे प्रभावित होते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।